اب اللہ تعالیٰ اسی کو مزید بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 26 اور 27 میں اپنی قوت، اپنے جلال اور اپنے اختیار کا تذکرہ فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ آپ تمام جہان کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہیں سلطنت چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت دیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، آپ کو پوری اختیار ہے، خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں، صرف اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ تو قدرت تھی نا انسانوں کے ساتھ، اب کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، تولج اللیل فی النہار، بے شک تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو چاہتا ہے جس کو رزق دیتا ہے بے حساب۔ اتنی قدرت والا رب ہے جس کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے۔ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے، جس کے آنے میں کوئی بھی شک نہیں، تو وہاں فیصلہ کرنے والی ذات کون ہے، وہاں کا جج کون ہے؟ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ذات ہے جو حقیقت میں بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ احساس دلا دیا کہ دنیا میں تم اپنے آپ کو بڑا مان کے یا ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کے مطمئن کر سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن تمہارے یہ دعوے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے سامنے فیصلے کرے گا۔ یہ آیات جو ہیں یہ امت مسلمہ کے لیے ایک دعا بھی ہے، دعا کا طریقہ بھی سکھایا گیا، اور اس آیت میں کفار پر غلبہ پانے کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول ایک خاص موقع سے متعلق ہے۔ مسلمان جب بدر اور احد کی جنگوں سے گزر چکے، بہت زیادہ مسلمانوں کی دھاک بھی بیٹھ چکی تھی اور لوگوں کی نظروں میں بھی آ چکے تھے، تو مکہ والوں نے اور مدینہ والوں نے، سب اپنے غیروں نے سوچا کہ سب مل جاتے ہیں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ ساری فوج قومیں جمع ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، اسباب اتنے تھے ہی نہیں کہ کچھ کیا جاتا۔ خیر فیصلہ ہوا کہ مدینہ شہر کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں، اور جو دشمن آئیں گے وہ باہر رہیں گے، ہم اندر بیٹھ کے تیروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ بہت کٹھن مرحلہ تھا، دن بہت تھوڑے تھے اور خندق جو کھودنی تھی وہ بہت زیادہ تھی، غنیم کے راستے میں مدینہ سے باہر خندق کھودنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کام میں حصہ ڈالا، 40-40 ہاتھ لمبی خندق 10-10 لوگوں کے ہاتھ میں آئی، اور عربی میں ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک نہیں ہوتا، یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، یہ پوری جس کو آپ کونی تک کہیں اس کو ہاتھ کہتے ہیں۔ تو 40 ہاتھ لمبی خندق جو تھی وہ 10-10 لوگوں کی ٹیم کے ہاتھ میں رکھی گئی، کئی میل لمبی تھی اور کتنی گہری تھی کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر سے اگر کم گہری ہوگی تو لوگ پار کر لیں گے۔ ارادہ یہ تھا کہ نہ لوگ خود پار کریں نہ گھوڑوں کے ذریعے پار کر سکیں۔ لوگ اتنی محنت سے یہ کام کر رہے تھے کہ سوائے قضائے حاجت کے، کھانے کے یا نماز کے، اس جگہ سے نہیں ہٹتے تھے، مسلسل بھوکے رہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا تو اس پہ دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اتنی بھوک اور پیاس سہی لوگوں نے اسلام کو سنبھالنے کے لیے، صرف کمپرومائز کر لیتے تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے، یہ عقیدے کی جنگ تھی۔ بہرحال ایسے میں کیا ہوا کہ جب لوگ کام کر رہے تھے تو راستے میں ایک پتھر آ گیا، جو صحابہ کرام اس وقت وہاں پہ اسائن کیے گئے تھے ان سے وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ جب وہ نہ کر سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان فارسی کو بھیجا کہ یہ پتھر راستے میں آ گئے، اور پوری خندق کھود لینا اور اس کو چھوڑ دینا، ایسے ہی تھا کہ سارے دشمن وہاں سے آ جائیں۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میں توڑوں گا، اور آپ نے اس پر زور سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور چٹان کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ ہٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ملک فارس کے محلات اور عمارتیں دکھائی دے گئیں، دور سے مجھے دکھا کہ اس دور کی ایک سپر پاور جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اسی طرح آپ نے دوسری ضرب لگائی تو آپ نے کہا کہ مجھے رومیوں کے سرخ محلات اور ان کی عمارتیں دکھائی گئیں، اور اسی طرح تیسری دفعہ آپ نے کہا کہ سنا یعنی یمن کے محلات دکھائے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کے ذریعے مجھے یہ خوشخبری دی گئی کہ میری امت ان تمام ممالک کو فتح کرے گی. آپ کی یہ باتیں منافقوں نے بھی سن لیں، جو دونوں طرف سوچ رکھتے ہیں نا، کچھ مسلمانوں کی کچھ کافروں کی، تو مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ آج دیکھو دشمن سے بچنے کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اور خواب دیکھ رہے ہیں روم اور فارس اور یمن کے محلات کی. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہہ دیجئے کہ اللہ، کل کہہ کے بات کو واضح کر دیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ آپ ان کو کہیں تاکہ یہ آپ کا جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کو خود ہی شرم آئے کہ ہم نے یہ بات کیا کر دی. اور یہ جو اللہم لفظ ہے نا، یہ اکثر دعاؤں میں آتا ہے، مسنون دعائیں جو ہوتی ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھی گئی ہیں ان میں اللہم آتا ہے، جبکہ قرآنی دعائیں اس میں یہ ربنا آتا ہے. اور اللہم کا جو لفظ ہے نا، یہ اصل میں یا اللہ تھا. یا ہوتی ہے حرف ندا ایڈریس کرنے کے لیے، جیسے انگلش میں او او فلان، یا اردو میں ہم کہتے ہیں اے فلان. اب یا کو حذف کیا گیا تو اس کی جگہ آخر میں میم لگا دی، کیونکہ حرف ندا اور میم اکٹھے نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ کل آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو سکھا دیں کہ اللہم، اے اللہ، مالک الملکی، تو بادشاہ ہے بادشاہی کا، یعنی اس کائنات کی بادشاہی تو تیرے ہاتھ میں، تو تل ملک من تشا، تو بادشاہی دیتا ہے. اگر آج تو نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے تو کل تو ہمیں روم اور فارس کی بادشاہت دے سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں مشکل نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ وطن سے الملک میں من تشا. آج جو لوگ بڑے بنے ہیں، جو آج ہمارے مقدر کے فیصلے کرنے والے ہیں، یہ سارے ہٹ سکتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا کے اندر ہی قوموں کے عروج اور زوال کی کہانی سنا دی. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی فرد یا قوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی حکومت کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگے اور اس فریب میں مبتلا ہو جائے نا کہ اس کے عمل کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اس کا کردار کتنا ہی زیادہ گھٹیا کیوں نہ ہو، اس کی سیرت کتنی ہی داغدار کیوں نہ ہو، لیکن کوئی اس سے حکومت چھین نہیں سکتا اور نہ اس کو عزت سے محروم کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو، اس کے دستے قدرت میں ہو، وہ دے گا تو ملے گا، وہ چھوڑے گا تو چھٹ جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت بھی ہے کہ جب کوئی قوم رحمت اور عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس سے حکومت کو چھین لیتا ہے. اور وہ قوم جو پستیوں میں ہونے کے باوجود اپنی انا کو مجروح نہیں ہونے دیتی، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے. جو کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ آگے لے آئے گا، جو کام نہیں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ پیچھے کر دے گا. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، جو اگر سمجھ آ جائے تو بہت سارے شکوے ہمارے ختم ہو جائیں. اصل میں یہاں بنی اسرائیل کو بھی اشارہ کیا جا رہا تھا کہ کل تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہی دی تھی، تم بڑے بنتے تھے، لیکن اب تمہاری من نافرمانیوں اور تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے اللہ عرب کے ان بدوؤں کو آگے لانے والا ہے. اب یہ سامنے آئیں گے اور تم پیچھے ہو جاؤ گے. ضرورت ہے اس بات کی کہ تم اس کے اوپر غور کرو، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنا محاسبہ کرنے پہ مائل کرتی ہے. بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں. بعض کہتے ہیں کہ یہاں بیدک الخیر و شر دونوں تھے لفظ، خیر بھی تیرے ہاتھ میں اور شر بھی تیرے ہاتھ میں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، شر نہیں کہا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ ہر شر میں بھی خیر ہوتی ہے. عربی زبان کا ایک متبنی شاعر ہے، اس کا ایک شعر ہے، اس کا مصرع ہے، کہتا ہے کہ مصائب قوم عند قوم فوائد. ایک قوم کے مصائب دوسری قوم کے فوائد ہوتے ہیں. کوئی جیتتا ہے تو دوسری طرف دوسرا ہار رہا بھی ہارتا ہے نا. एक को फ़ायदा मिल रहा है तो दूसरे का नुकसान भी हो रहा है ना। कायनात में हर शर में खैर है, पीछे भी हम ये बात पढ़ चुके ना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये भी असूल बता दिया कि अल्लाह की ज़ात जो है वो कौमों की ज़िंदगी में जो खैर और शर को लाती है, दर हकीकत वो खैर ही है। और यहाँ एक और भी बड़ा प्यारा अंदाज़ है अरबी ज़ुबान का कि अल खैरु बि यदई कहने की बजाय ये कह दिया गया ना कि बि यदी कल खैर। तो ये अंदाज़ जो होता है ये बात को बढ़ा देता है। ख़बर की तकदीम है, यानी जो ख़बर दी जा रही है वो पहले है और बात पीछे कर दी, यानी इससे ख़ास कर दिया कि सब कुछ तेरे पास है। और वैसे तो अल्लाह ताला खैर और शर दोनों का मालिक है, लेकिन यहाँ सिर्फ़ खैर कह दिया गया क्योंकि शर के आने में इंसान का अपना नफ्स भी होता है। अगर हम पे कोई मुसीबत आती है तो वो हमारे आमाल का बदला होती है। और इस आयत के बारे में एक बड़ी प्यारी रिवायत आती है, अलामा कुर्तुबी हैं वो लिखते हैं कि हज़रत मास बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो एक दफ़ा जुमे की नमाज़ में शिरकत ना कर सके। बाद में जब नबी सल्लम ने उनको पूछा कि आप किधर थे, तो कहने लगे हैं कि मैंने एक यहूदी योहन्ना बारिया कुछ उसका नाम था, उसका कर्ज़ देना था, और ऐन जुमे के दिन वो मेरे दरवाज़े पे आके खड़ा हो गया। उसने मुझे अंदर बंद कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा, मेरा कर्ज़ अदा करो। अब ये बात काफ़ी तकलीफ़ दे थी कि नबी सल्लम के एक सहाबी पैसों की वजह से नमाज़ अदा ना कर सके। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि ऐ मास, क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारा कर्ज़ अदा कर दे? मेरा हले कौन नहीं पसंद करेगा। तो ये कहते हैं कि मैंने कहा जी अल्लाह के नबी, मैं ये कर सकता हूँ। तो कहा फिर उसके बाद आपने फरमाया कि फिर तुम ये पढ़ा करो, कुल अल्लाहुम्मा से लेके बग़ैरी हिसाब तक की आयत के बाद आपने उनको एक दुआ सिखाई, रहमान दुनजवल आखिरा, दुनिया और आखरत के रहमान, व रहीमहुमा और इन दोनों में रहम फरमाने वाले, तूती मिनहुमा मन तशाओ, तू देता है इन दोनों में से जिसको चाहता है, व तमनाओ मिनहुमा मन तशा और तू रोक लेता है इन दोनों में से जिसको चाहे, इक्दी अन्ने दैनी मेरे कर्ज़ को अदा फरमा दे। तो आपने फरमाया कि अगर तेरे ऊपर ज़मीन भर के सोने के बराबर भी कर्ज़ होगा तो अल्लाह ताला इसको अदा फरमा देगा। ये दुआ थोड़े से अल्फाज के फ़र्क के साथ मिलती है मुख्तलिफ़ जगह से। तो पहली तो बात यह है कि इंसान को कर्ज़ से अपने आप को बचाना ही चाहिए, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से इंसान आ चुका है तो यकीन के साथ और अल्लाह ताला की इन सारी सिफ़ात को सामने रखते हुए पढ़ें। हमारा मामला वो होता है कि हम वजीफ़े के तौर पे पढ़ते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला की बड़ाई का यकीन हो जाएगा फिर वो पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको फ़ायदा होगा। एक और भी दुआ थोड़े से फ़र्क के साथ है, बोल देती हूँ, बाद में आप दोबारा सुन के अगर नोट करना चाहें। उसमें आपने फ़रमाया था कि शुरू में आयतें यही थी और बाद में फ़रमाया रहमान दुनजवल आखिरती व रहीमहुमा तूती मन तशाओ मिनहुमा व तमनाओ मन तशाओ इरहमनी रहमतन तुगनिनी बिहा अन रहमति मिन मन सिवाक अल्लाहुम्मा अग्निनी मिन अल फ़क्री वक्दी अन्निद्दैन। ये थोड़ी सी लंबी है रिवायत, लेकिन फ़र्क थोड़ा सही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब आप देखिए कि इन आयतों में हमने एक और चीज़ देखी, व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इसको भी थोड़ा सा देख लें। अमूमन हम इज़्ज़त किससे मांगते हैं? अमूमन हम क्या सोचते हैं कि जी इज़्ज़त का मामला है। सुनी हुई बात, अच्छे कपड़े क्यों पहन के जाने हैं? इज़्ज़त का मामला है। जेवरात पहनेगी बहू तो सास की इज़्ज़त हो जाएगी, सुनते हैं ना, और इसी तरह की बातें। हालांकि हकीकत यह है कि इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। अल मोइज़ अल्लाह का नाम है, अल अज़ीज़ उसका नाम है। इज़्ज़त पानी है ना तो अल्लाह से लेनी है पड़ेगी। कुछ असबाब इज़्ज़त होते हैं, इसी तरह कुछ असबाब ज़िल्लत भी होते हैं। अगर कोई हकीकत में इज़्ज़त पाना चाहता है ना, तो पहली चीज़ जिसकी उसको ज़रूरत है वो है ईमान। जितना ईमान ज़्यादा होगा ना उतनी इज़्ज़त ज़्यादा मिलेगी। सूरत मुनाफिकून आयत 8 में आता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर रसूलि वलिल मुमिनीन। अल्लाह के लिए इज़्ज़त है, उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए। फिर दूसरी चीज़ जो इंसान को हकीकी इज़्ज़त दिलाती है ना वो इल्म है, और उसकी दलील तो पीछे ही पढ़ चुके हैं आप, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ। उसमें क्या आया था, वर्रासिखून फिल इल्म, इल्म जो है ना ये अपने साहिब की शान बढ़ाता है, ये एक हदीस का खुलासा भी है। तीसरी चीज़ जो इज़्ज़त दिलाती है वो तकवा है। सूरत हुजरात में आता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, तुम में से जो जितना मुत्तकी है उतना ही इज़्ज़त वाला है। और आज हम इज़्ज़त किसको समझते हैं? कपड़ों को, घर को, गाड़ी को, जूती को, जेवरात को, और ख़ास तौर पे शादियों के मौके पे दावतों को। सास को कड़े पहना दो तो इज़्ज़त मिलेगी, और फलां को ये दे दो, दामाद को घड़ी पहना दो तो खुश होगा, कुछ नहीं होगा। आज लोग अपना नाम लेने के लिए क्या कुछ करते हैं, बड़ी बड़ी किताबों में नाम लिखाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से कूद पड़ते हैं कि हमारा नाम आ जाए वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लेकिन क्या होगा? आखिरत में वो किताब एक साइड पर रख दी जाएगी। तो असल चीज़ है कि इंसान इज्जत कर हासिल करे इन चीज़ों में। इसी तरह कुछ ज़िल्लत के भी असबाब होते हैं। कौन बंदा है जो अल्लाह ताला की निगाहों में जलील हो जाता है? उसमें पहली चीज़ है उजब। उजब कहते हैं खुद पसंदी को, इंसान खुद को पसंद करे, सेल्फ प्रेजिंग, खुशफहमियों में शिकार हो जाए, 30 मार खान। हाँ, नबी सल्लम ने फरमाया कि मोमिन खुद को जलील ना करे। कहा कैसे? कहा ऐसे कामों में हाथ डाल ले जिसकी उसमें ताकत नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना हरफन मौला बनना चाहते हैं, कर नहीं पाते, जो कर सकते हैं बस उसी की बात करें। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो जिल्लत होती है वो दीन से दूरी में, झूठ में जिल्लत है, बदनामी होती है। तो हमें अपनी इज्जत और जिल्लत के मेयार को भी बदलने की ज़रूरत है। आज कहाँ हमारे यहाँ इल्म को इज्जत की चीज़ समझा जाता है और कहाँ माल को समझा जाता है, इसको देखा जाए। फिर इसमें एक और चीज़ देखिए कि रात को दिन में और दिन को रात में बदलने की बात हुई। तूली जो लईल फिन नहार और बतूली जो नहार फिन लईल, ये क्या बताता है? इससे पता चलता है कि जो रब हर रोज़ इतनी बड़ी तब्दीली दिखा सकता है कि रात रोशनियों में बदल जाए, सुबह में आ जाए, सुबह रात में बदल जाए, तो क्या इंसान की ज़िंदगी के अंधेरों को रोशनी में नहीं बदल सकता? गमों की रात को खुशियों की सुबह में नहीं बदल सकता? उसके लिए क्या मुश्किल है बादशाह को गदा कर दे और गदा को बादशाह कर दे? इसलिए किसी को अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो चाहे दे, जो चाहे ले, ना कभी शिकवा कीजिए। कोई ले ले वो हमसे तो इसकी हिकमत जानिए, अपने अपनी वजह समझिए, अल्लाह पे बात ना करें। अल्लाह ने यही कानून अफराद के लिए भी दिया और यही कानून अल्लाह ताला ने कौमों के लिए भी दिया। और जब हमारे ये कवानीन दुरुस्त हो जाएंगे तो आप समझेंगे कि उसके बाद इज्जत मुसलमानों को मिलेगी। आज अगर मुसलमान दबे हुए हैं तो उसकी वजह यह है कि उनको अल्लाह ताला से ज़्यादा गैरों से उम्मीदें हैं। इसीलिए अब अगली आयात में अल्लाह ताला नॉन मुस्लिम्स के साथ ताल्लुकात को कैसा रखा जाए उसका तذکرہ है। बल्कि आप कह सकते हैं कि आयत नंबर 28 जो आगे आने वाली है, ये मुसलमानों की खारजा पॉलिसी का सतून है। खारजा पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन अफेयर्स होते हैं ना, गैर मुस्लिमों से कैसे ताल्लुकात रखे जाएं। असल में इसका ताल्लुक पिछली आयत से है कि अल्लाह ताला दिखाना चाहता है कि मुसलमान कहाँ से कैसे अपने आप को जोड़ेंगे। और ख़ास एक और छोटी सी बात, जो आयत 26 और 27 में, जो पीछे भी आपको रिवायत नोट कराई थी शहीद अल्लाहू में, उसमें ये आयतें भी आपको बताई गई थी कि जो हर फर्ज नमाज के बाद पढ़े तो अल्लाह ताला उसके लिए कुछ खुशखबरियाँ देते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें इन बातों की हिकमत समझ के फिर पढ़ने की तौफीक दे। बेसोचे समझे पढ़ने की बात नहीं है। एक और छोटी सी बात जो रह गई बीच में कि जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा कैसे है। देखिए, जिंदा में से मुर्दा ये है कि माँ जिंदा है तो बच्चा मुर्दा पैदा हो गया। फिर मुर्गी जिंदा है तो उसमें से अंडा जो है वो मुर्दा पैदा होता है। इसी तरह मुर्दा में से जिंदा ये है कि माँ मर गई तो बच्चा जिंदा पैदा हो गया। फिर अंडा मुर्दा था तो उसमें से जिंदा चूज़ा निकल आया। अब ये तो एक अमूमी मकसद है ना, लेकिन इसमें कौमों की भी बात है कि बिल्कुल उभरी हुई कौमों में से मुर्दा कौमें निकल आती हैं। नेक माँ बाप के घर बद बच्चे पैदा हो जाते हैं, जैसे नूह के घर में ऐसा बेटा पैदा हो गया जो पीछे रह गया, और इसी तरह आज़र के घर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो जाता है। तो ये अल्लाह की शान है, जो चाहे करे, किसी को किसी के ऊपर कोई बात नहीं करने की ज़रूरत। अब आइए ज़रा आयत 28 को देखते हैं कि इसमें गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुक़ किस बुनियाद पे होगा। फरमाया ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, न बनाएं ईमान वाले काफिरों को दोस्त ईमान वालों को छोड़कर, यानी ईमान वालों को छोड़कर काफिरों से दोस्तियां ना करें। व मैं यफ़ल ज़ालिका, और जो कोई ये करेगा क्या ये दोस्ती औलिया बनाएगा यानी विलायत के दर्जे पे जिनको ले जाएगा, तो फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, तो वो अल्लाह के मामले में या अल्लाह से उसका फिर कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ कितना ताल्लुक़ जायज़ है इन लोगों से, इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकात, मगर ये कि तुम उनसे मिलो बचते बचाते, यानी इनके शर से किसी तरह के बचाव के लिए तुम इनसे ताल्लुक़ रख सकते हो। और ये बात इतनी संजीदा है कि इसको सुनने के बाद ये याद रखो कि वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता है। ये छोटी बात नहीं है, अल्लाह तुम्हें अपने दुश्मनों के साथ मामला करना सिखा रहा है। इसलिए अगर इस ताल्लुक़ में कुछ कमी बेशी की तो याद रखना कि फिर अल्लाह सुबहान ताला तुम्हें अपनी जान से डरा रहा है। पहली दफ़ा ये आयत आई है इसमें कि अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डरा रहा है, आगे फिर आएगी दोबारा वइलल्लाहिल मसीर, और उसी की तरफ पलट कर आना है। आज दुनिया में अगर अल्लाह ताला के बताए हुए कानून और ज़ाब्तों पे अमल नहीं करोगे और विलायत के दर्जे पे कुफार के साथ दोस्तियां कर लोगे, तो याद रखो कि कल तुम्हें अल्लाह ताला के सामने पेश होना है और वो तुम्हारे दिल के अंदर आने वाली हर बात को भी जानता है। पिछली आयतों के साथ ताल्लुक़ हमने देख लिया कि पीछे बात हो गई थी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की, वो उसकी कुदरत की, अब बताया गया कि अल्लाह के दुश्मनों के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ हदें हैं। हमारे यहाँ इस बारे में दो एक्सट्रीम्स हैं, एक ये है कि इनके साथ सलाम भी ना करो, बात भी ना करो, मुर्ताबाद के नारे लगाओ, इनकी बसों को जलाओ, बद दुआएं मांगो कि अल्लाह करे वो फलां पूरे का पूरा मुल्क डूब जाए। और वहाँ रहते हुए मैं सोचती हूँ जो लाखों करोड़ों मुसलमान हैं उनका क्या होगा। मैं अमेरिका में रहती थी जब, यानी यूएसए में थी, तो मैंने किसी की ये हद से बड़ी हुई बात सुनी कि जो उन्होंने किसी भी आड़ में कही किसी मुल्क के, किसी मुल्क के ऊपर अमल या रवैये से कि अल्लाह इस मुल्क को तबाह कर दे। तो मैंने कहा ये तो आप हमें तबाह करने की बात कर रहे हैं, कितनी हद से घुड़ी हुई बात होती है ना कि जब आप सिर्फ नामों पे लोगों को परखने लगे और किसी एक अमल पे सारी बातों को लें। यानी एक तरफ तो ये है कि ये नाम लेना भी गुनाह है और इस तरफ बात की भी तो गलत है, और दूसरी तरफ है वो कहते हैं कि सब कुछ यही कुछ है, यानी मुसलमान तो होते ही बुरे हैं और सिर्फ यही अच्छे होते हैं। तो ये आयत में बड़े प्यारे तरीके से अल्लाह ताला ने बात की, और यही मज़मून आगे भी जाएगा। सूरत अल मुमतहना की आयत नंबर 8 है गालिबन, उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिलमवद्दा, क्या ईमान वालों मेरे दुश्मन और अपने दुश्मनों यानी काफिरों को दोस्त ना बनाओ कि तुम इनको दोस्ती के पैगाम भेजो। फिर आखिर में कहा कि वमई यफ़ल खुज़ा मिनकुम फ़कद दल्ला सवाज़ सबील, तुम में से अगर किसी ने यह किया तो वो सीधे रास्ते से भटक जाएगा। तो इस मामले में इस्लाम का नज़रिया क्या है कि ताल्लुकात के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। अगर आप इनको चार मुख्तलिफ दर्जों में बांट लें तो इंशाल्लाह आपको हर एक के साथ अलग अलग बता सकती हूँ कि क्या जायज़ है क्या जायज़ नहीं है। एक ताल्लुक़ होता है दिल का ताल्लुक़, मवद्दत, जिससे दिल में मोहब्बत है, कल्बी ताल्लुक़ है, उसी को यहाँ विलायत कहा गया। और इसी को बाद में आगे जाके आप एक और जगह पढ़ेंगे बेताना, बतन से, बतन कहते हैं पेट को, छुपी हुई चीज़, हम राज के मानों में। जिस चीज़ से मना किया जा रहा है ना इस आयत में वो विलायत है, जिसके ऊपर धमकी भी है, जिसके ऊपर बात भी की गई। और आयत नंबर 118 इसी सूरत आल इमरान की में आएगा कि ला तत्तखिज़ु बितानतम मिन दूनिकुम, वहाँ बिताना कहा गया। ये कौन सी होती है कि जिसमें हम राज बना दिया जाए, अपने मुल्क की राज दे दिए जाए, उनके हाथों में अपने आप को दे दिया जाए, वही आपकी पॉलिसीज़ बनाएं, वही आपके जीने मरने के तरीके अख्तियार करवाएं आपसे, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि औलिया जो है ना ये वली की जमा है, और वली का लफ्ज़ विलायत से है, विलायता या वलाया दोनों लफ्ज़ आते हैं। जब वाव के नीचे ज़ेर हो तो मानी होता है मदद करना, विलाया, और जब वाव पे ज़बर हो ना वलाया, वलाया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी काम का ज़िम्मेदार और इंचार्ज बनाना, यानी किसी को कुछ देना, मतलब इस दोनों का एक ही है। अब कहा क्या गया है कि तुम इनके साथ ऐसे मामलात ना करो कि तुम इनसे मशवरा करो और इनको अपने सारे काम सुपुर्द कर दो, तुम्हारे सियार सुफैद के ये मालिक हो जाएं, हर बात पर तुम्हें इधर से इंस्ट्रक्शंस आएं, ये तो पसंदीदा नहीं है, ना किसी मुल्क के लिए ना किसी फ़र्द के लिए। इस्लाम एक ख़ुद अपनी सोच रखता है, उसके मुताबिक इसको रखा जाएगा। इसके बाद एक दूसरा दर्जा होता है मवासात का, मीम वाओ अलिफ सीन अलिफ ता। मवासात का लफ्ज़ी माना होता है हमदर्दी, खैर ख्वाही, नफ़ा रसानी। ये क्या होता है, किसी को तकलीफ़ हुई, मिसाल है कि किसी जगह जलजला आ गया, वो नॉन मुस्लिम मुल्क था, बिल्कुल आप खैरख्वाही कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, इंसान है, इंसानों के साथ मामला होगा, एक बैनुल अक्वामी अख़ुव्वत भी होती है, तो इंसान होने के नाते हमदर्दी की जा सकती है। सूरह मुमतहना ही की आयत 8 में आता है, ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक्सितू इलैहिम। अल्लाह तुमको मना नहीं करता इनसे जो लड़ते नहीं तुमसे दीन पर, और नहीं निकाला तुमको तुम्हारे घरों से कि इनके साथ एहसान और इंसाफ का सलूक करो। तो ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी जगह जलजला आ जाए आप मदद कर सकते हैं, कहीं सैलाब आ जाए आप मदद कर सकते हैं। तीसरा दर्जा होता है मदारात का, उर्दू में भी ये लफ्ज़ बहुत बोलते हैं, खातिर मदारत। मदारात क्या होता है, ज़ाहरी खुशखुलकी, दोस्ताना बर्ताव, जानने वाले से भी हो सकता है, अनजाने से भी हो सकता है, ये गैर मुस्लिमों से भी होगा। आप रहते हैं, आपके नेबर्स में कोई रहता है, आप उनको मिलें, कुछ आप पकाते हैं उनको भेजें, अच्छे तरीके से बात करें, वो आपके घर आएँ, उनकी इज्जत करें, कोई हर्ज की बात नहीं है, इसमें मामला हो सकता है, ठीक है। फिर एक चौथा ताल्लुक़ होता है मुआमलात का, मुआमला इंट्रैक्शन, डीलिंग्स के मानों में, मसलन तिजारत, उजरत, मुलाजमत करनी इनके पास, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, सहाबे कराम भी करते थे, बाद वाले भी करते थे, लेकिन आपने अहले को खर्ब जो है उनके हाथ में असलहा फरोख करने से मना किया कि मुसलमान उनको हथियार ना बेचें, लेकिन क्योंकि वो हथियार फिर आपके ही काम आएंगे, ज़ाहिर है कि दुश्मनी है। हाँ, तिजारत की इजाज़त है, इनको मुलाजिम रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप देखिए कि चार में से सिर्फ एक चीज़ रोकी गई, और वो क्या है कि गहरे दोस्त ना बनाओ, बाकी हर तरह का मामला करो। अल्लाह के नबी सल्लम को अगर आप देखें कि उनकी सीरत में बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि आपने अहले किताब के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, हमदर्दी की। मसला आप देखिए कि जब मक्का से आपको निकाला गया और उसके बाद मक्का में कहत पड़ा, यमामा का हाकिम जो था सुमामा, वो मुसलमान हो गया, उसने कसम खा ली कि मैं मक्का वालों को एक दाना भी गंदम का नहीं दूंगा, और वो भूख से मरने लगे। फिर उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सिफारिश करवाई, तो आपने कहा कि सुमामा इनका अनाज रोको नहीं, दे दो, तो आपकी फरमाइश भी उसने दे दिया। फिर इसी तरह आप देखिए जब मक्का फतह हुआ, सब लोग इंतज़ार में थे कि आज पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, लेकिन आपने फरमाया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पे कोई पकड़ नहीं है। जंगे बदर हुई, कैदी हाथ में आए, तो उनके साथ वो सलूक किया गया जो लोग अपनी औलाद के साथ भी नहीं करते थे, खुद खजूर खाते जो मदीना में सबसे सस्ती चीज़ थी, और उनको रोटी खिलाते जो उनके लिए एक बड़ी नायाब चीज़ होती थी, यानी इम्पोर्ट होके आटा आता था, वहाँ पे खुद नहीं बनता था। फिर इसी तरह आपने सारी ज़िंदगी अपने लिए कभी बदला नहीं लिया, तो नबी सल्लम की सुन्नत में ये तरीका मिलता है कि आप नॉन मुस्लिम को मुर्दाबाद नहीं कहते थे, गालियाँ नहीं देते थे, उनकी एम्बेसीज़ के बाहर जाके पथराव नहीं करते थे, उनके नाम के आगे कुछ और ऐसे अजीबोगरीब निशान नहीं बनाते थे। हम खुद देखें कि हमारे अंदर कमी क्या है, जिस कौम का अखलाक दूसरों के साथ अच्छा है वो आपको क्यों मार रही है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिल रही है। तो लिहाजा इस मामले में अपने आप को दुरुस्त रखें। फिर अल्लाह के नबी के बाद देखें, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ज़िमियों के साथ बहुत अच्छा सलूक होता था, नॉन मुस्लिम लोग जिनको रखा जाता था उस मुल्क में, वज़ाइफ दिए जाते थे उनके, बूढ़ों और हैंडीकैप लोगों को पूरा गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता था, बेशुमार ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक चीज़ से रोका कि उनको अपना राज ना दो। अब सवाल पैदा होता है क्यों, जब तीन तरह के ताल्लुक हैं तो चौथा भी क्यों ना हो, हम राज बन जाएं। तो देखिए ये दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं, इस्लाम का नज़रिया कुफर का नज़रिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब दोस्ती गहरी दोस्ती में बदलती है ना, तो बंदा दोस्त के दीन पर आ जाता है, जब हमारी नस्लों की गहरी दोस्तियां अगर ऐसी लोगों से होने लगी कि जहां उनका फिर दीन अपना भी खतरे में पड़ गया, तो खुदा फरामोशी हो गई। अल्लाह ताला ने हम सबको एक मकसद के साथ पैदा किया है। इस्लाम एक मकसद सिखाता है, इसके बरक्स कुफर अमूमन खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। पर्पसलेस लाइफ है, लग्जरियस लाइफ है, बिल्कुल फ़र्क है। आप पढ़ेंगे आगे जाके कि ईमान वाले और कुफल वाले बराबर नहीं होते। तो लिहाजा जब हम किसी के साथ इस हद तक भर जाएंगे कि जीना मरना बराबर हो जाए, खाते पीते साथ रहेंगे, तो हमारे अंदर उन्हीं के राज रंग ढंग आने लगेंगे। बस इसलिए रोकता है कि बस इस तरह ना करो कि तुम मकसद से हट जाओ। अल्लाह ने हमें मकसद दिया, सूरत अनाम में ही आता है ना कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महया ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बंदे मोमिन की ज़िंदगी का एक मकसद है कि वो अल्लाह के लिए जीता है, नमाज कुर्बानी ज़िंदगी मौत सब अल्लाह के लिए। इसके बरक्स जब इंसान दूसरी तरफ पड़ता है तो उसकी ज़िंदगी जो है फिर शैतान के हाथों पे जाती है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि इन्न शैतान लकुम अदुव, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा फत्तखिज़ूहु अदुवा, तुम भी उसको अपना दुश्मन बनाओ। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये बात बता के ये खूबसूरत पैगाम पूरा किया कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगा, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ करेगा, वो अपने ईमान को पूरा करेगा। सही बुखारी और मुस्लिम की बहुत प्यारी रिवायत है कि मन अहब्ब लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, वबग़ज़ लिल्लाह, और जिसने अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, फ़कद इस्तकमलल ईमानहू, बस उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। असल पता है ये मौजू हमें क्यों चुभता है? बहुत लोगों को दुखता है और इस बात पे तो बड़े बोलते हैं हालांकि पूरे पैगाम को समझते नहीं। वो इसलिए कि हमें इस्लाम की कदर ही नहीं है, अल्लाह की मार्फत ही नहीं। जब आपको आप अपने बच्चों को किसी से रोकेंगे ना, तो बच्चा कहेगा क्यों, आप बहुत ऐसी हैं, आप एक तरफ से सोचती हैं, आपको ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपको कोई पता चले ना कि कोई शख्स आपका दुश्मन है, आपको गाली देने वाला है या आपको जहर देने वाला है, तो कभी भी आप उसकी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे। तो ज़रूरत है इस बात की कि बच्चों को ज़बरदस्ती एक झटके के साथ ऐसे कल्चर से निकालने की बजाय पहले उनको इस्लाम के करीब किया जाए। आपने तरतीब देखी है ना, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, वहाँ से ये सारा मजमून चल रहा है और अब अगली दो आयतों तक पूरा होगा। दीन इस्लाम है, इख्तलाफ किया तो लोग भटक गए। कौन सी ज़ात है जिसने दीन दिया? तो अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह की पहचान दी, तो उसके बाद साथ ही बताया कि अल्लाह के दुश्मनों का भी बता दें। उनका बताया, उनके साथ ताल्लुकात की बात बता के कह दिया कि एक तरीका रखो और उसके साथ मतलब मामलात की हद करो। और इन सारी चीज़ों को तकवीयत क्या चीज़ देती है? इत्तबाए रसूल। आज कल माजी में हाल में मुस्तकबिल में कौन सी चीज़ है जो बंदे को दोस्ती और दुश्मनी को एक सही रुख पे रखने का तरीका सिखाती है? वो अल्लाह के नबी की इत्तबा है। इसीलिए फरमा दिया, अगली आयतों में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला हमें फरमाएंगे, इंशाल्लाह हम एंड पे उसको आएंगे। अभी चलते हैं आयत नंबर, इसी आयत को दोबारा दोहरा दूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप आयतों के साथ जोड़ नहीं करेंगे। देखिए ज़रा, ला यत्तखिज़ुल मोमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। बात वाज़े, मिन दूनिल मोमिनीन से भी समझिए कि मुसलमान एक तरफ है और एक तरफ काफिर है, तो तकाबुल में ईमान वालों के काफिरों को नहीं पकड़ेंगे। वमन यफ़्फ़ल ज़ालिका, जो ये करे क्या करे, विलायत के दर्जे पे नॉन मुस्लिम से दोस्तियाँ करें, तो फ़लैसा मिनल्लाह फ़ी शैइन, फिर अल्लाह से उसको कोई ताल्लुक़ नहीं। कितनी बड़ी बात है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप कि फिर अल्लाह कहते हैं मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपने कभी सुना है लोगों में, लोग अपने नाम पे जब लड़ते भिड़ते हैं ना, तो कहते हैं अच्छा तुम उसके घर गई ना, तो मेरे से फिर तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। ये छोटे छोटे इंसान कह रहे होते हैं जिनको ख़ुद अपने ऊपर भी इख्तियार नहीं, लेकिन इतनी बड़ी ज़ात कहती है कि देखो अगर तुम अपनी दोस्ती और दुश्मनी के मामले को इधर उधर कर लोगे तो फिर मेरे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, कितना ताल्लुक़ रख सकते हो, इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकात, मगर ये कि बचते बचाते, ये कौन सा ताल्लुक़ है? वो तुम्हारी जान ले रहे हैं, तुम्हें धमकी दे रहे हैं, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए अगर किसी वक्त उनको अपना दोस्त भी कहना पड़ता है तो कह लो। इस पे आगे भी एक आयत आएगी, उस पे मज़ीद बात होगी। बस अपने हकूक़ को पामाल ना होने दो, फितने में ना अपने आप को डालो, फिर कर सकते हो। और वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, सख्ती है ना इस हुक्म में, तुम्हें अल्लाह अपने नफ्स से डरा रहा है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के दोस्त और दुश्मन की बात है ना। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ पलट के जाना है। यहाँ पे तिलावत सुनते हैं।
قُلِ اللَّهُمَّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير